पृष्ठ संख्या 17, द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी। भारतेंदु के समय ही केवल 35 वर्ष की अवस्था में काल कवलित हो जाने से हिंदी साहित्य की अपूर्णीय क्षति हुई, किंतु वह अपने पीछे कवियों और लेखकों का एक ऐसा मंडल छोड़ गए थे जिसने विरासत से प्राप्त अपने प्रिय कवि के गुरुतर दायित्व का भलीभांति निर्वहन किया। भारतेंदु के अस्त होने से हिंदी के क्षितिज पर जो निविड़ अंधकार छा गया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ओजस्वी प्रभा मंडल से वह जल्द ही विच्छिन्न हो गया। एक साहित्यिक महानायक का अवसान और दूसरे साहित्यिक महानेता का उदय सच में हिंदी जगत की एक विस्मयकारी घटना थी। लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के रूप में भारतेंदु की आत्मा ने ही पुनर्जन्म ले लिया हो। द्विवेदी ने अपने व्यक्तित्व की ऐसी छाप छोड़ी कि वह एक युग निर्माता आचार्य के रूप में स्थापित हो गए। उनके सम्मान में 1900 से 1918 ईस्वी तक के समय को द्विवेदी युग की संज्ञा से अभिहित किया गया। सन 1903 ईस्वी में आचार्य द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका का संपादक बनाया जाना हिंदी जगत में एक बड़ी साहित्यिक घटना का सूचक है। इस पत्रिका के माध्यम से लगभग 18 वर्षों 1903 से 1920 ईस्वी तक उन्होंने हिंदी की जो अप्रतिम सेवा की वह अविस्मरणीय है। लेखक, संपादक, विचारक, भाषा परिष्कारक और अनेक कवियों के काव्य कर्म के उपकारक आदि अनेक रूपों में उनका साहित्यिक व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने उनके युग को द्वितीय उत्थान, डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नवजागरण काल, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने पूर्ण स्वच्छंदता काल की संज्ञा दी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पहले 1900 से 1902 ईस्वी के बीच बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू श्याम सुंदर दास जैसे मरीषी सरस्वती के संपादक रह चुके थे, पर द्विवेदी जी के हाथों पढ़कर ऐसा प्रतीत हुआ मानो सरस्वती स्वयं मुखरित हो उठी हों। ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। इस सिद्धांत के वाहक पृष्ठ संख्या 18, द्विवेदी जी ने साहित्य के अतिरिक्त पदार्थ विज्ञान, भूगर्भ विद्या, परमाणुवाद, ज्योतिर्विद्या आदि साहित्यिक और वैज्ञानिक विषयों पर लेख बराबर प्रकाशित करते रहे। महावीर प्रसाद रचनावली के संपादक श्री भारत यायावर ने लिखा है कि इन्वर्टेड कामा बहुभाषाविद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय नवजागरण के लिए ज्ञान और विवेक की जो वैज्ञानिक धारा निर्मित की, उसे जाने और मूल्यांकन किए बगैर हम अपनी जातीय विरासत को न तो ठीक-ठीक समझ सकते हैं, न भविष्य की ओर सही कदम बढ़ा सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद। डॉक्टर नंदकिशोर नवल ने लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा नए अनुभव और ज्ञान से उन्होंने वस्तुतः सरस्वती का स्तर इतना उठा दिया कि वह हिंदी की साहित्यिक पत्रिका का प्रतिमान बन गई। देश की अन्य भाषाओं में भी उसके मुकाबले की पत्रिका एक दो से अधिक नहीं थी। इन्वर्टेड कॉमा बंद। साहित्यिक जगत में सरस्वती का रुतबा यह था कि उसमें जिस भी रचनाकार की रचना छपती थी उसे बड़ा कवि या लेखक मान लिया जाता था। नया पैराग्राफ। नवजागरण की जिस भावना का उन्मेष भारतेंदु युग में हुआ, सुधारवाद के रूप में उसकी व्यापक प्रतिष्ठा द्विवेदी युग में हुई। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, अनुवाद, भाषा संस्कार, छंद संस्कार, नए काव्य प्रतिमानों का निर्माण और नए नए विषयों का विस्तार आदि सब कुछ ने यहाँ आधार भूमि प्राप्त की। राजाओं और रईसों के दरबार से निकलकर कवियों ने काव्य को जनभाषाओं का संवाहक बनाया। देशव्यापी अनेक आंदोलनों और परिवर्तनों का प्रभाव भी इस युग के काव्य और साहित्य में देखा जा सकता है। स्वदेशी की अवधारणा तथा गांधी जी के विचारों की छाप भी इस युग की कविता में विद्यमान है। स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार शीर्षक कविता में द्विवेदी जी ने लिखा है कि विदेशी वस्त्र क्यों हम ले रहे हैं, वृथा धन देश का क्यों दे रहे हैं, न सूझे हैं अरे भारत भिखारी, गई है हाय तेरी बुद्धि मारी। श्री भारत यायावर ने लिखा है कि इन्वर्टेड कामा द्विवेदी जी ने तीसरा काम स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने महात्मा गांधी के चरखा करघा आंदोलन से बहुत पहले ही स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार जैसी कविताएं और अनेक लेख लिखकर इस चेतना का प्रसार किया था। इसी चेतना के तहत मातृभाषा की रक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द व भाईचारे की भावना को बल प्रदान करने का काम काज राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, पृष्ठ संख्या 19, योगी अरविंद आदि ने किया और देश की सुप्त धमनियों में नए रक्त का संचार कर उसे अंगड़ाई लेकर जागने के लिए विवश कर दिया। भारतेंदु की भांति देश की आर्थिक दुर्दशा, धन के विदेश गमन, कुटीर एवं लघु उद्योगों के समापन तथा किसानों और कामगारों की विवशता का मार्मिक वर्णन द्विवेदी जी ने 1908 ईस्वी में लिखी अपनी पुस्तक संपत्ति शास्त्र में किया है। श्री भारत यायावर ने लिखा है कि इन्वर्टेड कामा द्विवेदी जी ने अपने जीवन में सबसे अधिक परिश्रम से जो पुस्तक लिखी थी वह है संपत्ति शास्त्र। यह पुस्तक हिंदी में अर्थशास्त्रीय चिंतन को पहली बार व्याख्यायित रूप में प्रस्तुत करने के साथ ही अंग्रेजी राज में भारत की आर्थिक दुरावस्था को अत्यंत गहराई से विश्लेषित करती है। यूनाइटेड कामा बंद कहना न होगा कि धन के विदेश गमन की जो चिंता भारतेंदु के नाटकों में देखने को मिलती है वही चिंता द्विवेदी जी की इस पुस्तक में दिखाई पड़ती है। अगला पैराग्राफ। आचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व हिंदी में खड़ी बोली के मानक रूप के प्रतिष्ठापक के रूप में भी जाना जाता है। भारतेंदु युग में भाषा का जो द्वैत रूप था द्विवेदी जी ने उसे समाप्त कर दिया। गद्य की भांति पद्य में भी कवियों को खड़ी बोली में कविता लिखने को प्रोत्साहित किया। कविकर्म शीर्षक अपने प्रसिद्ध निबंध में उन्होंने लिखा है कि इन्वर्टेड कामा गद्य और पद्य की भाषा पृथक नहीं होनी चाहिए। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके गद्य में एक प्रकार की और पद्य में दूसरे प्रकार की भाषा लिखी जाती है। सभ्य समाज की जो भाषा हो उसी भाषा में गद्य पद्यात्मक साहित्य होना चाहिए। इन्वर्टेड कामा बंद इसी दृष्टि से द्विवेदी जी सही मायने में खड़ी बोली कविता के जनक थे। बिहार में बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के लिए जो आंदोलन चलाया और भारतेंदु ने गद्य विधाओं में जिसके प्रयोग का मार्ग प्रशस्त किया द्विवेदी जी ने उसे अब पूरी तरह से साहित्य में प्रतिष्ठित कर दिया था। अगला पैराग्राफ। द्विवेदी युग में प्राचीन और नवीन दोनों ही संवेदना का काव्य रचा गया। खड़ी बोली प्रयोग के साथ ब्रजभाषा में भी कविता होती रही। श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग के ब्रजभाषा के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं। उनका उद्भव शतक इस परंपरा का अंतिम क्लासिक काव्य है। द्विवेदी युग के कवियों में मैथिली शरण गद्य, सियाराम शरण गद्य, राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, सत्यनारायण कविरत्न, रूप नारायण पांडे, रामचरित उपाध्याय, लाला भगवान दीन, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, कवि सम्राट हरिऔध, लोचन प्रसाद पांडे, रूप नारायण पांडे आदि नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। खड़ी बोली का प्राथमिक प्रयोग तुक और छंदों पर बल देने के कारण द्विवेदी युगीन कविता बहुत कुछ इतिवृत्त प्रधान हो गई है। पृष्ठ संख्या 20, नैतिकता और उपदेश ने भी उसकी इतिवृत्तात्मकता में अपना योग दिया, क्योंकि मनोरंजन के साथ उपदेश को भी द्विवेदी जी कविता का लक्ष्य मानते थे, जिसे मैथिली शरण गुप्त ने इस प्रकार व्यक्त किया है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। द्विवेदी युग की कविता का प्रमुख स्वर राष्ट्रीयता और देश प्रेम है। इसके अलावा समाज सुधार, श्रृंगार, नायक नायिका वर्णन, संयोग वियोग के चित्र, प्रकृति चित्रण, ऋतु वर्णन, समस्या पूर्ति, स्त्री शिक्षा, मानवता और प्रेम बंधुत्व, भक्ति और नीति के कथन, अतीत अनुराग आदि इस युग की कविता के अन्य वर्ण्य विषय हैं। नैतिक उत्थान और सामाजिक सुधार इस युग के साहित्य का प्रधान लक्ष्य है। पैराग्राफ चेंज। द्विवेदी जी ने काव्य और साहित्य के परिक्षेत्र को भी व्यापक बनाने का अस्तुत्य कार्य किया। रसज्ञ रंजन में संकलित कवि कर्म निबंध में कविता का विषय क्या हो, इस संबंध में द्विवेदी जी ने कविता को रीतिकाल से आगे ले जाते हुए लिखा है कि इन्वर्टेड कामा कविता का विषय मनोरंजक और उपदेश परक होना चाहिए। यमुना के किनारे केलि कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की आवश्यकता है और न स्वकियाओं पर गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत आकाश अनंत पृथ्वी अनंत पर्वत, सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। द्विवेदी जी का यह कथन आधुनिक काव्य संवेदना का प्रशस्ति वाक्य है, जिसने कविता की संवेदना को पृथ्वी से लेकर अनंत आकाश तक विस्तृत कर दिया। काव्य के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, जीवनी संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। सरस्वती के अतिरिक्त अभ्युदय, मर्यादा, माधुरी, इंदु, प्रताप, आर्यदर्पण, आज, चांद, भास्कर, भारतोदय, भारत मित्र, समालोचना आदि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से द्विवेदी युग के लेखकों और चिंतकों ने ज्ञान और साहित्य का प्रसार किया। पैराग्राफ चेंज। द्विवेदी युगीन कवियों ने महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, कथानक काव्य, गीत काव्य, चंपू काव्य आदि अनेक काव्य रूपों में कविता की। कवि सम्राट हरिऔध ने प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास नाम के दो महाकाव्य लिखे। उनका प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, जिसमें उन्होंने राधा और कृष्ण कथा को युग अनुरूप एक नई दृष्टि दी है। इसमें कृष्ण एक सामान्य मानव है, ना कि ब्रह्म। हरिऔध ने इसमें अधिकांशतया पृष्ठ संख्या 21 संस्कृत छंदों का प्रयोग किया है। प्रिय प्रवास में कवि का संदेश विश्व मानवता, विश्व शांति और वसुधैव कुटुंबकम का है। मानव की मति दानवता तजी, मानवता कब मंजु लहेगी, नीति कुनीति कहाँ है नहीं कब, सुंदर नीति सुपंथ गहेगी, आकुल है हरिऔध महा, कब आकुलता कबहू न रहेगी, प्रेम सुधा करते करते कब शांति सुधा वसुधा में बहेगी। 1914 से 1918 ईस्वी का यह वही समय है जब प्रथम विश्व युद्ध के शोलों में मानवता भस्मीभूत हो रही थी और विश्व भर का मानव जीवन विलाप कर रहा था। क्रूर हिंसा और अशांति के बीच हिंदी कवि उक्त कामना कर रहा था। पैराग्राफ चेंज। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि हैं। उनका साकेत आधुनिक हिंदी का एक प्रमुख महाकाव्य है। इस महाकाव्य के माध्यम से गुप्त जी ने न केवल कवियों द्वारा उपेक्षित उर्मिला के त्यागमय चरित्र का प्रकाशन किया, बल्कि युग युग से उपेक्षित कैकेयी जैसी माता का भी अनुताप कराकर उसके हृदय और चरित्र की निर्मलता सिद्ध की। गुप्त जी ने पंचवटी, यशोधरा और भारत भारती जैसे खंड काव्यों की भी रचना की। यशोधरा में उनकी नारी भावना इस प्रकार प्रकट हुई है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। राष्ट्रीयता, देश प्रेम, अतीत का गौरवगान, सांस्कृतिक पराभव का चित्रण, स्त्री जीवन का सम्मान आदि गुप्त जी की रचनाओं का मूल स्वर है। उनका भारत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले वीरों की कंठहार बन गई थी। इसमें देश के सांस्कृतिक पराभव के प्रति गुप्त जी की चिंता साफ झलकती है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। राष्ट्र की एकता, अखंडता, अतीत के प्रति अनुराग, राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रति आक्रोश, आत्मोत्सर्ग और स्वदेशानुराग आदि के भावों के कारण गुप्त जी राष्ट्र कवि कहलाए। भारतेंदु ने स्वदेश प्रेम की जो धारा बहाई थी, भारत भारती में उसका चरम विकास देखा जा सकता है। अगला पैराग्राफ। इस युग के अन्य कवियों में श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, सत्यनारायण कविरत्न, राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रीधर पाठक और मुकुटधर पांडे की कविताओं में पहले पहल स्वच्छंदतावाद के दर्शन होते हैं। पृष्ठ संख्या 22। पाठक जी की रचनाओं में प्रकृति का जैसा मनोहारी चित्रण मिलता है वैसा द्विवेदी युग के किसी अन्य कवि में नहीं। कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी की एक कविता में वह कश्मीर की धरती की तुलना स्वर्ग से करते हुए कहते हैं कि यही स्वर्ग सुरलोक, यही सुर कानन सुंदर, यही अमरन काल ओक, यही कहूँ बसंत पुरंदर। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने पथिक, मिलन तथा स्वप्न जैसे खंड काव्यों की रचना करके राष्ट्र सेवा, प्रेम और त्याग बलिदान का संदेश दिया। भावुकता, कल्पना प्रमणता, उदारता, अनुराग और विराग के नैसर्गिक भाव उनकी रचनाओं में देखे जा सकते हैं। राष्ट्रोन्नति की कामना और समाज सुधार का स्वर भी उनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है। ज्ञान का दंड शीर्षक कविता में वह कहते हैं, देखते हैं मृग याद आते मृग लोचनी है, फिर भूखे भारत के दृग याद आते हैं, केकी के कलाप को किला के कल गान में बिलाप विधवा का सुन हम दुख पाते हैं, अत्याचार पीड़ित किसान के रुदन में पयोद के विनोद हम भूल भूल जाते हैं, भोग सकते न सुख भूल सकते न दुख, यों ही दुविधा में पड़े जीवन बिताते हैं। यहाँ भूखे दृग उसी भारत देश का वर्णन है जिसका जिक्र भारतेंदु अपने नाटकों में तथा प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में बार बार किया है, और आगे चलकर प्रसाद, निराला, दिनकर, नागार्जुन और मुक्तिबोध तथा धूमिल जैसे कवियों ने भी बार बार दोहराते हुए इसकी याद दिलाई है। किसानों, मजदूरों, विधवाओं की दीन दशा आदि का चित्रण नाथुराम शर्मा शंकर तथा गया प्रसाद, शुक्ल, स्नेही जैसे द्विवेदी युग के अन्य कवियों ने भी किया है। अगला पैराग्राफ। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग में काव्य के नए नए क्षितिज उद्भाषित हुए। काव्य की परिधि का दायरा बढ़ने से कविता में पुराने संस्कारों के साथ ही साथ नए संस्कारों का भी प्रवेश हुआ। खड़ी बोली पहली बार कविता में व्यवहित हुई, पर ब्रजभाषा काव्य का स्रोत अभी भी बंद नहीं हुआ। रत्नाकर जैसे अनेक कवि अभी भी ब्रजभाषा में रचना कर रहे थे। उपदेश, समाज सुधार और मनोरंजन कविता के प्रमुख लक्ष्य थे। तुक और छंद के मोह, नैतिकता और उपदेश की भावना के कारण कविता में इतिवृत्तात्मकता बढ़ गई। पृष्ठ संख्या 23, जिसके कारण वह काफी हद तक नीरस, बोझिल, शुष्क और कहीं कहीं उबाऊ भी हो गई। प्रकृति के दृश्य इन सब में अच्छे हैं। गीत और स्वच्छंदता के भाव में छायावाद का पूर्ण रूप दिखाई पड़ता है। द्विवेदी युग के काव्य की सामाजिकता का स्थान भी छायावाद में जाकर वैदिकता ने ले लिया। खड़ी बोली छायावाद के भीतर मंज कर निकली। भाव और शिल्प के स्तर पर इसे ही स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने लिखा है कि इन्वर्टेड कामा, द्विवेदी युग में काव्य विषयों में तो पर्याप्त विस्तार हुआ, किंतु मर्मस्पर्शी काव्य सृष्टि बहुत कम हुई। कवियों का ध्यान खड़ी बोली को काव्य अनुकूल बनाने में लगा रहा। व्याकरण के दोषों के प्रसार की संभावना कम कर दी। काव्य शैली इतिवृत्तात्मक हो गई। अधिकांश कवियों की कविताएं तुकबंदी बनकर रह गईं। इन्वर्टेड कॉमा बंद। श्री रविंद्र भ्रमर ने भी इन्हीं बातों की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा, द्विवेदी युग की कविता काव्य कला के आधुनिक तत्वों से वंचित रह गई। उस काल के कवियों की शक्ति भाषा और छंदों के परिमार्जन में लगी रही और वह किसी प्रकार के सूक्ष्म सौंदर्य बोध का परिचय नहीं दे पाए। द्विवेदी युग की इन दुर्बलताओं की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप छायावाद युग का आविर्भाव हुआ। इन्वर्टेड कॉमा बंद। भाषा की लक्षणा और व्यंजना, शक्ति का चमत्कार, भाव के सूक्ष्म सौंदर्य बोध के साथ पहली बार छायावादी कविता में पूर्ण माधुर्य के साथ प्रकट हुआ।